महत्व शुभ अवसर पर हम सभी को भगवान जगन्नाथ जी की कथा का श्रवण कराने के लिए, इसका स्वागत कराने के लिए हमारे भक्त प्रदेश आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। इसके जिला मंत्र पर हुए हैं,
हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय कुंज राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री श्रीधर पंडित तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय। श्री मुकुंद दत्त तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सुमित डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सुमित डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सुमित डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज तीन त्यौहार हैं और ये तीनों ही त्यौहार ऐसे हैं जो कि साल में केवल एक ही दिन आते हैं। स्नान यात्रा साल में एक बार आती है और जो दो तिरुभाव हैं तो वे भी क्योंकि उनके आविर्भाव अज्ञात हैं, इसलिए उनकी भी याद हम साल में एक बार ही करते हैं। एक तो श्रीधर पंडित हैं, उनका तिरुभाव है, तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता है, तो केवल साल में एक ही दिन उनको याद करते हैं, श्रीधर पंडित को। और श्री मुकुंद दत्त का भी तिरुभाव दिवस है, हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव दिवस नहीं आता है। कुछ ऐसे आचार्य हैं जिनके आविर्भाव तिरुभाव दोनों आते हैं, तो साल में दो दिन उनको हम याद कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे वैष्णव आचार्य हैं जिनका आविर्भाव आता है, तिरुभाव नहीं आता, तो साल में केवल एक ही दिन याद करते हैं। या कुछ ऐसे वैष्णव आचार्य हैं जिनका साल में तिरुभाव आता है, आविर्भाव नहीं आता है। तो ये दो जो महापुरुष हैं जिनका तिरुभाव है, तो साल में एक ही दिन हम उनको याद करते हैं। तो हम तीनों त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे, पहले स्नान यात्रा की चर्चा करेंगे। भगवान स्नान करते हैं, ये कहा जाता है ना कि हम भगवान को अगर सुख पहुंचाते हैं तो हमें सुख प्राप्त हो जाता है, अगर भगवान को हम दुख पहुंचाते हैं तो हमें दुख प्राप्त होता है, अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी सेवा हो जाती है, और हम भगवान की रक्षा करते हैं तो हमारी सुरक्षा होती है, और भगवान को जो विनाश करने का प्रयास करते हैं उनका विनाश हो जाता है, है ना। तो सब कुछ वैसे ही होता है जैसा हम भगवान के साथ करते हैं। तो भगवान का स्नान अगर हम करते हैं तो हमारा असली स्नान होता है, आप समझ रहे हैं। हमारी आत्मा का स्नान जो है, अगर सचमुच अगर हमें अपनी आत्मा का स्नान कराना है तो क्या तरीका है, भगवान को स्नान कराएं, और भगवान को स्वच्छ करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो हमारी आत्मा का श्रृंगार होता है, हमारी आत्मा का स्नान होता है। स्नान यात्रा एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि भगवान हमारी आत्मा है, आत्मा का स्नान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनेक प्रकार के मलों से आत्मा लिप्त है, काम क्रोध लोभ ये सब जो है कई प्रकार के मल हैं जिनसे आत्मा दूषित है ना, जिसको आत्मा को स्नान कराना है और सब मल हमें साफ करना है अपनी आत्मा का, तो हम क्या करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, है ना। यद्यपि नाम भी जो है आत्मा को स्नान कराता है, नाम जो श्री चैतन्य के शिक्षा अष्टकम में पहला श्लोक है उसमें बताया गया है, सर्व आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण के संकीर्तन से संपूर्ण आत्मा का स्नान हो जाता है। लेकिन नाम का अपराध जब हम करते हैं तो फिर कीर्तन से हमारा स्नान नहीं हो पाता, आत्मा का स्नान नहीं हो पाता है, है ना। लेकिन स्नान यात्रा के दिन हम प्रार्थना करें, हम स्नान यात्रा के दिन प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगन्नाथ, मैं आपकी स्नान यात्रा देख रहा हूँ या देख रही हूँ, या मैं आपका स्नान करा रहा हूँ या करा रही हूँ, तो इसके फलस्वरूप मेरी आत्मा का भी स्नान हो जाए, है ना। ये बताया गया है कि चार धाम हैं भारतवर्ष के, चार दिशाओं में चार धाम हैं, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, है ना, बद्रीनाथ धाम है, और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, और पश्चिम दिशा में द्वारका, और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, है ना। तो ये चार धाम हैं, और ये चार धाम चार युगों में विशेष प्रसिद्ध होते हैं। सतयुग में प्रसिद्ध होता है कौन सा, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम, तो वहाँ भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष होता है सतयुग में, और त्रेता में रामेश्वरम, वहाँ भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, द्वापर में द्वारकाधीश, है ना, तो वहाँ भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष होता है, और कलयुग में जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी, है ना, तो प्रत्यक्ष भगवान दर्शन देते हैं। और विशेष कार्य क्या होता है भगवान के द्वारा सतयुग में, जो भगवान विशेष कार्य करते हैं वो क्या है, तपस्या, तपस्या ही तपस्या, बद्रीनाथ धाम में जो है भगवान की तपस्या ही तपस्या चलती है ना। त्रेतायुग में भगवान रामेश्वरम, रामेश्वरम में भगवान क्या करते हैं, स्नान ही स्नान करते हैं, स्नान ही स्नान करते हैं। और द्वापर में जो भगवान है वहां पर भगवान क्या करते हैं, शयन करते हैं, तो शयन ही शयन करते हैं, सोते रहते हैं। और कलयुग में जगन्नाथ जी क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन ही भोजन करते हैं। हरि बोल। तो कलयुग में जगन्नाथ जी भोजन ही भोजन करते हैं, है ना। और स्नान करते हैं, स्नान साल में एक बार, स्नान साल में केवल एक बार, और प्रतिदिन अनेक बार भोजन, है ना। तो भगवान के, तो भगवान के प्रत्येक कार्य दिव्य हैं। भगवान कोई भी कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य दिव्य है। भगवान के किसी भी कार्य में दोष नहीं होता कि कोई कहे कि जो है भगवान तपस्या करते हैं, उनको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान तपस्या करते हैं, संसार की सुरक्षा होती है, और भगवान सोते हैं तो उनको सोने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान वास्तव में सोते नहीं हैं, लेकिन सोने की लीला करते हैं, है ना। तो सब भगवान की जो लीलाएं हैं ये दिव्य हैं। तो आज जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। सबसे पहले महाराज इंद्रद्युम्न ने जब जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो ब्रह्मा जी स्वयं आज के दिन स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं जगन्नाथ जी का। तो आज का जो दिन है ये समझिए बहुत महत्वपूर्ण है स्नान यात्रा का। सबसे पहले जगन्नाथ जी इस पृथ्वी में जब प्रकट हुए थे, तो महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका अभिषेक कराया था, और ब्रह्मा जी स्वयं आकर के उन्होंने अभिषेक किया था। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा है। फिर आषाढ़ का पूर्ण कृष्ण पक्ष के लिए भगवान बीमार हो जाते हैं, उसे कहते हैं अनवसर, दर्शन नहीं होता है, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता है। यहाँ भी ऐसे है या क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 15 दिन बंद, 15 दिन भगवान जो है बीमार रहते हैं, दर्शन नहीं देते हैं और अपनी चिकित्सा कराते हैं, है ना। फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, उस दिन रथ यात्रा होती है, है ना। तो रथ यात्रा करके जो है 15 दिन पहले स्नान यात्रा का ये अवसर है। तो आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हम लोगों ने जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के दर्शन किए हैं। अब जो दो महापुरुष हैं जिनका आज तिरुभाव दिवस है, तो उनमें से पहले हम सुनेंगे मुकुंद दत्त के बारे में। ये घटना उस समय की है जब श्री चैतन्य निमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध हैं, विवाहित हैं, गृहस्थ हैं और शिक्षक हैं, व्याकरण की शिक्षा देते हैं, और जो वैष्णव लोग हैं वे बड़ा कष्ट पाते हैं, वे बड़ा कष्ट पाते हैं कि पाखंडी लोग उनके कीर्तन की निंदा करते हैं, तो बड़ा कष्ट पाते हैं। लेकिन भगवान इस समय भक्ति प्रकट नहीं कर रहे हैं और कीर्तन में भाग नहीं लेते हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान शिक्षा की लीला कर रहे हैं, एक शिक्षक हैं। तो भगवान का अवतार तो इसीलिए हुआ है कि कीर्तन का आरंभ करना है पूरे संसार में, लेकिन अभी भगवान जो है अपना असली कार्य नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। और शिक्षक किस चीज के शिक्षक हैं, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के शिक्षक हैं, है ना। तो वैष्णवों को जब देखते हैं तो प्रश्न पूछने लगते हैं भगवान, और प्रश्न किस तरह के पूछते हैं, इस शब्द का अर्थ बताओ, उस शब्द का अर्थ बताओ, नहीं तो तुमको नहीं जाने दूंगा। और कोई जो भी अर्थ बताए उसका खंडन करेंगे, है ना। तो बड़ी समस्या थी वैष्णवों को, जो है बड़ी समस्या थी। अब ये भगवान है, कृष्ण है स्वयं, तो अपने भक्तों को ही इस प्रकार से छेड़ते हैं और भक्त लोग जो है अपने भगवान को नहीं समझ पाते हैं, और हमेशा यही शिकायत करते हैं कि निमाई पंडित जो है भक्त कैसे बने, और भक्त नहीं बना तो क्या फायदा, इतना सुंदर शरीर है और इतनी शिक्षा है, क्या फायदा है, जीवन में भक्ति नहीं आई तो क्या फायदा है। और प्रार्थना करते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, निमाई पंडित को अगर भक्त बना दो तो हम उसका जो है संग तीनों लोकों में कहीं नहीं छोड़ें। निमाई पंडित अगर भक्त बन जाए तो हमें बहुत बल मिल जाएगा, हम पाखंडियों के फिर सिर फोड़ेंगे। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो मुकुंद दत्त भी इसी प्रकार के हैं, लेकिन समस्या यही है कि सामने आए तो जो है, बड़ा लज्जित होना पड़ता है। तो एक दिन क्या हुआ, देवयोग से रास्ते में श्री मुकुंद से मिलन हो गया, तो इन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, जैसे कोई वसूल करने के लिए, अपना कर्जा वसूल करने के लिए किसी को पकड़ ले, इसी प्रकार से श्री गौर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, देखो मुझे देखकर तुम भाग क्यों जाते हो? आज मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना मैं देखता हूँ कैसे जाते हो तुम। हाथ ही पकड़ लिया, कैसे जाते हैं? जैसे कोई जो है वसूल करने वाला हो ना, इस तरह से। तो मुकुंद मन में सोचने लगे कि विश्वंभर को आज मैं कैसे परास्त करूं, ना कैसे परास्त करूं। तो इनका तो अभ्यास एकमात्र व्याकरण में है, इससे आज मैं अलंकार शास्त्र की बात पर इन्हें पराजित करूंगा। मुकुंद ने सोचा कि ये तो व्याकरण ही केवल पढ़ाते हैं, अलंकार शास्त्र की जो है बात पर मैं इनको पराजित करूं, जिससे क्या होगा, आगे से कभी भी अपना गर्व नहीं दिखाएगा ये। तो ये सोचा, ये विचार कर मुकुंद ने जो जो बात श्री प्रभु के सामने कही, प्रभु ने उस सब व्याख्या का खंडन कर दी। ये भगवान है, सृष्टि के पति है, कौन सा शास्त्र है जो वो नहीं जानते, है ना। तो फिर क्या हुआ, मुकुंद ने कहा, विश्वंभर व्याकरण तो बच्चों का शास्त्र है, बच्चे ही उस पर विचार करते हैं, आज मैं तुम्हारे साथ अलंकार शास्त्र का विचार करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा, ठीक है, जो चाहो तुम पूछो। कठिन से कठिन जो अलंकार का विषय था, मुकुंद श्री प्रभु से पूछने लगा। तो महाप्रभु सर्वशक्तिमान अवतार हैं, ये उसके अलंकारों का खंडन करके उसके दोषों को स्थापन करने लगे। मुकुंद फिर प्रभु के खंडन को स्थापन ना कर सका, जिस बात को उन्होंने काट दिया अब दोबारा वो जोड़ नहीं सकते, है ना। फिर तब प्रभु हंसकर कहने लगे, मुकुंद आज घर जाकर तू फिर अच्छी प्रकार पुस्तक का अध्ययन कर, फिर कल मुझसे आकर के जिज्ञासा करना। मुकुंद ने महाप्रभु की चरण धूल लेकर माथे पर चढ़ाई और वहां से चल दिया। मुकुंद मन में सोचने लगे, साधारण मनुष्य में ऐसा पांडित्य कहाँ हो सकता है, मन में सोच रहे हैं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें विश्वंभर का अभ्यास ना हो। यदि ऐसा सुबुद्धि व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाए तो मैं तीनों लोकों में कभी इसके संग का त्याग नहीं करूंगा। हरि वो, इस प्रकार से मुकुंद जो है प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से। अब सुनिए, अब ये घटना उस समय की है जब श्री चैतन्य गया की यात्रा से लौट करके आए हैं, ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली है, मंत्र दीक्षा ली है, और अब कृष्ण प्रेम में वे जो है बहुत रोते हैं, कृष्ण के विरह का अनुभव करते हैं, कृष्ण प्रेम में रोते हैं, और कभी कभी भक्तों के बीच में अपना तत्व ही प्रकाशित करने लगते हैं, और वो जब ईश्वर भाव में आ जाते हैं तो सब कुछ, सब रहस्य बताते हैं, सब भक्तों के रहस्य बताते हैं। और एक बार तो उन्होंने सप्त प्रहरिया भाव प्रकट किया। सप्त प्रहरिया भाव का मतलब सात प्रहर तक, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, तो अगर एक प्रहर को 3 घंटे का माना जाए तो 7 प्रहर का कितना हुआ, 21 घंटा लगातार ईश्वर भाव में रहे भगवान। तो इस स्थिति में भगवान जो है पर्दे के अंदर हैं और भक्तों को एक एक करके पर्दे के अंदर बुलाते हैं और अपना दर्शन देते हैं और उनको वरदान देते हैं। क्या वरदान चाहिए, मांगो, मुझसे मांगो। इस तरह से भगवान जो है एक एक भक्त को बुलाते हैं, नाम ले ले करके, और उसके पिछले जन्म की भी बातें बताते हैं, इस जन्म की भी बातें बताते हैं, और याद दिलाते हैं कि तुम ऐसे थे, मैं तुम्हारे ऊपर इस प्रकार की सहायता की, या तुम हमारे साथ ये लीला करी। तो भगवान इस प्रकार से याद दिलाते हैं। अब सब भक्तों को बुलाया एक एक करके, लेकिन मुकुंद को नहीं बुलाया, जबकि मुकुंद उनके सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा निकट। और कीर्तनिया, मुकुंद के कीर्तन से ही भगवान प्रेम के आवेश में आते हैं, तो उसी को नहीं बुला रहे और सब भक्तों को बुला रहे। तो क्या हुआ, अब मुकुंद को साहस नहीं है, अगर वो भगवान नहीं बुलाए तो मुकुंद का साहस नहीं है कि वो जाए भगवान के साथ। लेकिन बहुत अन्याय, ये तो बहुत अन्याय हो रहा है मुकुंद के साथ। मुकुंद सबसे प्रिय हैं, वैष्णव के बहुत प्रिय हैं, और प्रभु के साथ निरंतर कीर्तन करते हैं, फिर भी ये दंड उनको क्यों मिल रहा है, मुकुंद को उन्हें महाप्रभु अपने पास क्यों नहीं बुला रहे हैं, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। महाप्रभु नहीं बुलाते, वो स्वयं भी भीतर नहीं आ सकते, ये देखकर सबके चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। तब श्रीवास बोले, हे प्रभु सुनिए, मुकुंद ने आपका क्या अपराध किया है। अब हिम्मत किसकी हुई, श्रीवास बोले, मुकुंद ने आपका क्या अपराध किया है। मुकुंद तो आपका बड़ा प्यारा है और हम सबों का प्राण है, उसके गान को सुनकर किसका हृदय नहीं पिघल जाता है, वो भक्ति परायण है, सब ओर से सावधान रहता है, उसका अपराध तो बताइए जिस कारण उसका अपमान हो रहा है। किसने कहा, श्रीवास ने कहा, यदि कोई अपराध हो तो उसको दंड दीजिए, पर अपने दास को दूर क्यों कर रहे हैं। दास का अपराध हो और स्वामी दंड दे तो ये तो उसकी कृपा है, लेकिन अगर त्याग देता है तो ये कठोरता है, तो आप इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मुकुंद को दंड दो, अगर कोई अपराध किया है अपने सेवक को, आप स्वीकार अगर करें तो दंड दीजिए, है ना। आपके बिना बुलाए वो आपके सामने नहीं आ सकता है, प्रभु आप उसे भली प्रकार से बुलाइए, वो भी आपका दर्शन करे। तुम ही ना डाकी लेना रे सम्मुख आई थे, देखो के तुम्हारे प्रभु बोले भाल मते। तब प्रभु बोले, ऐसी बात फिर कभी ना कहना। भगवान जो है लीला कर रहे हैं कठोरता की, है ना, तो क्या कह रहे हैं, ऐसी बात फिर कभी ना कहना, उस बेटा के लिए मुझसे कोई भी प्रार्थना ना करे। तुम लोगों ने पहले सुना ही होगा, ग्वाले लोग गाय को खली खिलाते हैं और फिर गाय को लाठी मारते हैं, ये बेटा मुकुंद ऐसा ही है, इसे किसी ने नहीं पहचाना, ये क्षण में तो दांतों में तिनका लेता है और क्षण में लाठी चलाता है, ऐसा खड़ चाटिया बेटा मुझे नहीं देख सकता है। तो श्रीवास बहुत बड़े वक्ता थे, फिर बोले, प्रभु आपकी बात समझने वाला यहाँ कौन है, आप क्या बोल रहे हैं, हमको तो मुकुंद का कोई दोष नहीं दिखाई देता, आपके चरण कमल इसके साक्षी हैं। प्रभु बोले, ये बेटा जहां जाता है वहां वैसी ही बातें बोलता है और उनसे मिल जाता है, जब अद्वैत के साथ योग वासिष्ठ पढ़ता है तब दांतों में तिनका पकड़कर भक्ति पूर्वक नाचता है, और जब किसी अन्य मायावादियों के साथ होता है तो भक्ति को नहीं मानता है बल्कि भक्ति पर प्रहार करने लगता है। भक्ति से भी कोई वस्तु बड़ी है ऐसा जो कोई कहता है वो मुझ पर निरंतर लाठी चलाता है। कोई अगर ऐसा कहे कि भक्ति से बढ़कर कुछ है, है ना, तो मुझ पर निरंतर लाठी चलाता है, इस प्रकार भक्ति के प्रति इसका अपराध है, अतः इसके लिए मेरे दर्शन में बाधा है। भगवान बोले, भक्ति स्थान है उभार हाइले अपराध, इत के उभार हाइला दर्शन बाध। मुकुंद बाहर से सब सुन रहे थे, अब भगवान मुकुंद को डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं श्रीवास जी से, है ना, पर्दे के अंदर श्रीवास जी हैं, मुकुंद पर्दे के बाहर हैं, लेकिन सुना रहे हैं मुकुंद को ही। तो ऐसा कभी कभी होता है ना, डायरेक्ट बात नहीं करते किसी और से बात करते, ये ऐसा है, है ना, तो भगवान मुकुंद के बारे में मुकुंद को ही सुना रहे हैं, है? श्रीवास जी से बोल रहे हैं। तो मुकुंद बाहर से सब सुन रहे हैं, उन्होंने जब सुना कि मुझे दर्शन नहीं मिलेगा तब ये मन में सोचने लगे, मैंने पहले गुरु के समझाने पर भी भक्ति को नहीं माना था, मेरी इस बात को श्री चैतन्य सर्वज्ञ होने के कारण जानते हैं। तो जब श्री चैतन्य का अवतार ही नहीं हुआ था या जो भी हो, और उनको सब कुछ पता है, तो मुकुंद अपने मन में सोचने लगे, अब इस देह को रखना मेरे लिए उचित नहीं है, ये शरीर अपराधी है, आज मैं शरीर को त्याग दूंगा, किंतु ये नहीं मालूम कितने समय के बाद कब प्रभु का दर्शन मिलेगा, तो पहले ये मालूम कर लूँ कब दर्शन देंगे तब मैं अपने शरीर को त्यागूंगा। तो मुकुंद ने बाहर से कहा कि श्रीवास जी सुनिए, प्रभु से इतना पूछ लीजिए कि मुझे महाप्रभु दर्शन कभी होंगे भी या नहीं। अब महाप्रभु सुन रहे हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, श्रीवास जी से बोल रहे हैं, श्रीवास जी आप महाप्रभु से पूछो कि मुझे दर्शन होंगे या नहीं। ये कहकर मुकुंद रोने लगे और उसके दुख से सब वैष्णव भी रोने लगे। ये अच्छा है। ये अच्छा है, ठीक है। हाँ तो मैंने क्या बताया, मुकुंद रो रहे हैं और उनके दुख से सब भक्त भी रो रहे हैं। तब प्रभु बोले, जब उसके करोड़ जन्म बीतेंगे तब मेरा दर्शन पाएगा। 1 करोड़ जन्म के बाद दर्शन पाएगा, है ना, तो निश्चय पाएगा। ये शब्द प्रभु के मुख से सुनते ही मुकुंद का तन मन रोम रोम सुख में भीग गया। देखिए, है ना, हमसे कहा जाए 1 करोड़ जन्म के बाद दर्शन होगा तो हम क्या करेंगे, छोड़ो क्या करना भक्ति करके, 1 करोड़ जन्म के बाद दर्शन मिलेगा। लेकिन नहीं, भक्त अपने को इतना विनम्र, स्वयं इतना विनम्र होता है कि 1 करोड़ जन्म के बाद ही अगर दर्शन मिले तो भगवान की कितनी दया है मेरे ऊपर। मुकुंद जो है कैसे सोच रहे हैं, और पाऊंगा पाऊंगा कहता हुआ महानृत्य करने लगा। 1 करोड़ जन्म के बाद अगर दर्शन मिलेगा तो ये तो बहुत भगवान की कृपा है, तो बहुत सस्ता दर्शन हो गया, वो ऐसे सोच रहे हैं, है ना। और बेहाल होकर श्री चैतन्य का जो है मैं दर्शन पाऊंगा, बेहाल होकर के नृत्य करने लगा। तो मुकुंद को देखकर प्रभु विश्वंभर हंस पड़े और आज्ञा दी कि मुकुंद को शीघ्र ले आओ ले आओ। तब तो सब वैष्णव आओ मुकुंद पुकारने लगे, परंतु सुने कहा मुकुंद वो नहीं सुन रहा है। उसको इतना आनंद हो रहा है, जैसे दर्शन हो गया उसको, इतना आनंद हो रहा है, वो नृत्य कर रहा है। प्रभु बोले, मुकुंद तुम्हारा अपराध नष्ट हो गया, आओ मेरे दर्शन करो और प्रसाद लो। प्रभु की आज्ञा से भक्त उसे पकड़ करके लाए, तो वो भगवान की बात भी नहीं सुन रहा है, तो भक्त उसे पकड़ के लाए। अपने सामने महाप्रभु देखकर मुकुंद पृथ्वी पर गिर गए और प्रभु बोले, उठो मेरे मुकुंद उठो, तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं रहा, तुम्हारा संग दोष सब दूर हो गया और तुमसे मैं हार गया। मैंने तो कहा था करोड़ जन्म में मेरा दर्शन पाओगे, किंतु तेरे तुमने मेरे वचन को एक क्षण में ही बदल दिया। हरि बोल। मेरे वचन कभी बदलते नहीं हैं, ये तुमने निश्चय कर लिया, इसी से तुमने मेरे मुझे अपने हृदय में बांध लिया है कि मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने ये अपने हृदय में गांठ बांध ली कि 1 करोड़ जन्म के बाद प्रभु दर्शन देंगे, क्योंकि उनका वचन है। इस वचन में तुमने जो है चूंकि निश्चय कर लिया है मेरे वचन में, तो तुमने मेरे मुझको अपने हृदय में बांध लिया है। तुम तो मेरे कीर्तनिया हो, सदा मेरे साथ रहते हो, हंसी विनोद के साथी हो, हंसी विनोद के साथी हो तुम मेरे, इसीलिए तुम्हारे साथ मैंने कुछ कौतुक किया। यदि सचमुच करोड़ अपराध भी तुम करो तथापि सब क्षमा करूंगा। हरि बोल। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारा शरीर भक्ति से बना है, तुम मेरे दास हो, तुम्हारे जीवा पर मेरा निरंतर निवास है। भक्ति में तुम्हार शरीर मोर दास, तुम्हारे जीवाय मोर निरंतर वास। तब श्री महाप्रभु के आश्वासन को सुनकर मुकुंद रोने लगे और अपने को धिक्कारते हुए अपनी निंदा करने लगे। वे बोले, मैंने इस नीच मुख से भक्ति को नहीं माना, प्रभु का दर्शन करने पर भी मैं भक्ति शून्य क्या सुख पाऊंगा। अब मुकुंद जो है अपने उसी विचार में आ गए कि मेरे अंदर भक्ति तो है नहीं, अब दर्शन करने से मुझे क्या सुख मिलेगा। दुर्योधन ने भी तो आपके विश्वरूप को देखा था, जिसको देखने को वेद निरंतर ढूंढते रहते हैं। विराट रूप देख करके भी दुर्योधन वंश सहित विध्वंस हो गया, क्यों, कि भक्ति नहीं थी। भक्ति शून्य होने के कारण दर्शन के सुख से भी वंचित रहा। मैंने ऐसी भक्ति को अपने मुख से नहीं माना, अतएव आपके दर्शन करने पर भी मुझे क्या सुख मिलेगा। जिस समय आप रुक्मिणी को हरण करने गए, उस समय सब राजाओं ने भी तो आप को गरुड़ के ऊपर चढ़ा हुआ देखा था, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं थी। अभिषेक के समय आपका राज राजेश्वर नाम हुआ, राजाओं ने आपका महा अभिषेक देखा, ब्रह्मा आदि जिस रूप के दर्शन के अभिलाषा करते हैं वो रूप आपने विदर्भ नगर में प्रकाशित किया, परंतु उस रूप को देखकर भी सब राजा जल के मरे और शोक से कोरे रह गए। क्यों? भक्ति नहीं थी, वे भक्ति शून्य थे। एक बार आप जगत कारण स्वरूप शुक्र रूप में जल में प्रकट हुए, पृथ्वी को दांत के ऊपर धारण किया, ऐसा आपका जो रूप था जिसके दर्शन के देवता लोग भी खोजते फिरते हैं, उसका दर्शन हिरण्याक्ष ने किया, परंतु भक्ति शून्य होने के कारण उसे भी सुख नहीं मिला। और एक रूप आपके उसके भाई हिरण्यकश्यप ने देखा, वो रूप लक्ष्मी देवी के हृदय से भी गुप्त था, जिसे त्रिभुवन में नरसिंह का रूप कहते हैं, उसे देखकर भी हिरण्यकश्यप मर गया। भक्ति शून्य होने के कारण ऐसी भक्ति को मेरे मुख ने स्वीकार नहीं किया, मेरी जीव उस समय कटकर क्यों नहीं गिर पड़ी। मुकुंद जो है अपने अपराध को सच्चा मान रहे कि सचमुच मैंने अपराध किया। हे न भक्ति मोर छार मुखे ना मानिल, ये बड़े अद्भुत है मुखे खसी ना पड़िल। मुकुंद ने कहा प्रभु कुब्जा ने आपका दर्शन तो नहीं किया, यज्ञ पत्नियों ने और मथुरा की स्त्रियों ने भी, मथुरा के सुदाम माली ने भी आपको दर्शन नहीं किया, लेकिन उनमें भक्ति थी और भक्ति के कारण उन्होंने आपको प्राप्त किया। मतलब कुब्जा ने भगवान का दर्शन नहीं किया था, लेकिन सुनती थी और सुनने से ही भगवान से प्रेम करने लगी। यज्ञ पत्नियां भी सुनने से ही उन्होंने भगवान से प्रेम किया, फिर उनको दर्शन हुआ, है ना। मथुरा की स्त्रियां भी सुनती रहती थी, है ना, तो दर्शन तो बाद में हुआ लेकिन सुनने सुन के भक्ति हुई। तो मुकुंद ये कह रहे हैं तो उनमें भक्ति थी, उस भक्तियों के कारण उन्होंने आपको प्राप्त किया। उसी मथुरा में कंस आपको देख करके भी मारा गया, ऐसी भक्ति को मेरे मुंह ने नहीं माना, इतना होने पर भी यही आपकी बड़ी कृपा है कि मैं जीवित हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, ये आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए। जिस भक्ति के प्रभाव से अनंत देव अनंत ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं और प्रभु के इस ज्ञान में ऐसे मत हैं कि फण पर कुछ है इसका ज्ञान उन्हें नहीं है, पूरी पृथ्वी उनके फण पर रखी है लेकिन उनको पता नहीं चलता। क्यों? आपके गुणगान में मस्त हैं, स्वयं भी निराधार हैं परंतु सबको धारण कर रहे हैं, ये अधिकार उनको भक्ति के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ऐसे भक्तियों को मुझ पापी ने नहीं माना, अतएव अनंत जन्मों में भी मेरी संगति नहीं होगी। भक्तियों के प्रभाव से ही शंकर जी कल्याणकारी हुए हैं और भक्तियों के प्रभाव से ही नारद मुनि श्रेष्ठ माने गए हैं। व्यास जी ने वेद धर्म शास्त्र योग शास्त्र अनेक शास्त्रों की रचना करके भी चित्त में प्रसन्नता का अनुभव नहीं किया, उनके चित्त विक्षेप का कारण एक ही अपराध था कि उन्होंने भक्ति को संक्षेप से वर्णन किया था। फिर नारद जी कहने पर जब उन्होंने भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया तब उनका दुख दूर हुआ। कौन सा ग्रंथ है जिसमें भक्ति का विस्तार से वर्णन है? श्रीमद् भागवत, है ना। तब उनको तब उनका दुख दूर हुआ और संसार का उद्धार कर दिया। एक कीड़ा होकर के मैंने ऐसी भक्ति को नहीं माना, फिर भी आपके दर्शन करने के मेरी सामर्थ्य देखो कि मैं आपके दर्शन करके भी जिंदा हूँ। मुकुंद कह रहे हैं आपका दर्शन भक्तिहीन आपका दर्शन करते हैं तो मारे जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूँ, ये देखो कितना आश्चर्य है। कीट है ना माने लो मोई हे न भक्ति आरो तो मां देखी वारे आचे मोर शक्ति। ऐसा कहते हुए मुकुंद भुजा को उठाकर रोने लगे और सांस के साथ उनका सारा शरीर हिल रहा है। सिस्कियां भरते ना तो पूरा शरीर हिलता है, तो हाथ उठा करके रो रहे हैं, सिस्की भर भर करके रो रहे हैं। श्री चैतन्य के प्रिय भक्तों में जिनकी गणना है ऐसे अनन्य भक्त मुकुंद की भक्ति की सीमा में क्या कहूँ। मुकुंद के खेत को देखकर प्रभु विश्वंभर लज्जित होकर के बोले। अब भगवान को बड़ी लज्जा हो रही कि उससे हंसी मजाक किया, लेकिन अभी तो वो अपने को वैसे ही समझने लगा, है ना। तो भगवान लज्जित हो रहे हैं और भगवान के बोले मुकुंद की भक्ति मुझे बहुत प्रिय है, तुम जहाँ गाते हो वही मैं प्रकट हो जाता हूँ। भगवान कह रहे हैं तुमने जो कुछ कहा वो सब सत्य है, भक्ति के बिना मेरा दर्शन मिल जाने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता, वो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कारण कि तुम मेरे बड़े प्रिय हो। मैंने जो कुछ भी वेद में कहा है कि जिन जिन कर्मों के करने से जो जो दिव्य गति प्राप्त होती है उसको मिटाने की सामर्थ्य किसमें है, परंतु मैं सब कुछ उलट सकता हूँ, सब विधि विधान के ऊपर मेरा अधिकार है। मैंने ही अपने मुख से ये सत्य घोषणा कर रखी है कि मेरी भक्ति के बिना किसी भी कर्म का सार कुछ भी नहीं है। भक्ति को ना मानने से मुझे मार्मिक दुख होता है, मेरे दुख के कारण भक्तिहीनों को दर्शन का सुख नहीं मिलता है। कंस के धोबी ने मेरा दर्शन किया था, मैंने उससे वस्त्र मांगे, फिर भी वो दर्शन के आनंद सुख से वंचित ही रहा। क्यों? वस्त्र नहीं दिए। कारण जिसमें प्रेम भक्ति नहीं थी, मेरे दर्शन के लिए उसने कितना तो तप किया था और कितने करोड़ देह उस धोबी ने छोड़े। महाभाग्य से उसे मेरा दर्शन तो मिला, परंतु भक्ति शून्य होने के कारण दर्शन का सुख उसे नहीं मिला। तो दर्शन करने के लिए तपस्या की उसने, लेकिन भक्ति नहीं थी, है ना, तो सब बेकार है, तपस्या भी बेकार है। मेरे सेवक के निकट जिसका अपराध होता है उसको मेरे दर्शन के सुख में बाधा पड़ जाती है, कारण कि भक्ति के निकट अपराध करने से भक्ति मिट जाती है और भक्ति के भाव में दर्शन करने की शक्ति चली जाती है। तुमने जो कुछ भी कहा वो सब मेरी कही बातें हैं, तुम्हारे मुख में दूसरी बात आ भी कैसे सकती है। महाप्रभु ने आगे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं भक्ति वितरण करूंगा और मैं सबसे आगे तुम्हारे कंठ स्वर में प्रेम भक्ति देता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं, सबसे पहले मैं तुम्हारे कंठ में प्रेम भक्ति देता हूँ, कि जैसे तुम्हारे कंठ से भजन निकलेगा तो उसमें प्रेम भक्ति, सब जो भी सुनेंगे उनको प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। हरि बोल। सबसे पहले मैं तुम्हारे कंठ स्वर में प्रेम भक्ति देता हूँ, जितने भी मेरे वैष्णव भक्त हैं वे सब तुम्हारे गान को सुनकर द्रवीभूत हो जाएंगे। हरि बोल। जैसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो वैसे तुम और सब महानुभावों के भी प्रिय होगे, जहाँ जहाँ मेरा अवतार होगा वहाँ वहाँ तुम भी मेरे गायक होगे। हरि बोल। जेखाने है मोर अवतार तथा गायन तुम है भी अमार। जब मुकुंद के प्रति भगवान ने ऐसा वरदान दिया तो महा जय जयकार ध्वनि होने लगी, सब लोग हाथ उठाकर हरि बोल हरि बोल हरि जय जगन्नाथ हरि हरि कहते हुए अपने अपने उच्छ्वास को निवेदन करने लगे। मुकुंद की स्तुति और वर प्राप्ति के प्रसंग को जो कोई सुनेंगे, क्या सुनेंगे, एक तो मुकुंद की स्तुति, मुकुंद ने अपनी निंदा की थी, है ना, और वर प्राप्ति का प्रसंग, भगवान ने वरदान दिया, है ना, तो दो चीजें जो सुनेंगे, मुकुंद की स्तुति और वर प्राप्ति के प्रसंग को जो कोई सुनेंगे वे भी श्री मुकुंद के साथ प्रभु के गायक होंगे। ये सब चैतन्य चरित्र वेद के लिए भी गुप्त है, मूढ़ जन नहीं मानते। ये सब कथा सुनने पर जिसे सुख होता है, ये सब कथा सुनने से जिसे सुख होता है, सुन लीजिए ध्यान से, ये सब कथा सुनने से जिसे सुख होता है उसी चैतन्य के मुख चंद्र का अवश्य दर्शन करेगा। इस प्रकार से जितने भी भक्त थे सबने स्तुति की और सबने वर प्राप्त किए। तो इस प्रकार से हमने मुकुंद के बारे में कुछ बातें सुनी, आज उनका तिरुभाव दिवस है और उनके बारे में अगर हम सुनते हैं तो इसमें बहुत बड़ा फल हमने बताया आपको कि बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। तो अब हम सुनेंगे श्रीधर पंडित के बारे में। श्रीधर पंडित सुने बड़े ध्यान से कि भगवान इसी सप्त प्रहरिया भाव में है। मुकुंद के साथ मुकुंद को नहीं बुलाया था तो इस तरह से ये सब लीला हुई और भगवान जो है एक एक भक्त को बुला रहे हैं, तो उनके मुख से आज्ञा हुई झट से श्रीधर को ले आओ। अब श्रीधर तो उनके साथ में नहीं आते हैं, वो तो अपने घर में रहते हैं और रात भर कीर्तन करते हैं, अभी रात का समय चल रहा है ना, तो जो भक्त को बुलाते हैं तो भक्त तुरंत आ जाता है, जो भक्त वहीं पर है। लेकिन श्रीधर को भगवान ने कहा बुला के लाओ, क्योंकि वो जो है भगवान के कीर्तन में नहीं आते हैं, वो अपने घर में ही कीर्तन करते रहते हैं। तो भगवान ने कहा झट से श्रीधर को ले आओ, वो आकर मेरे प्रकाश को देखे, वो बड़ा दुख पाता हुआ अभी निरंतर मेरा चिंतन किया करता है, झटपट ले आओ उसे, वो आकर मुझे देखे। तुम लोग इस मोहल्ले के आखिरी में जाओ। भगवान क्या कह रहे हैं, श्रीधर कौन है? भक्त लोग सोचते हैं भगवान कह रहे हैं श्रीधर को लाओ, जल्दी लाओ, तो श्रीधर कौन है? तो भगवान कहते हैं इस मोहल्ले के आखिर में जाओ, वहां जिसको तुम मुझे पुकारते हुए सुनोगे उसे पकड़ लाओ, मुझे पुकार रहा है वही श्रीधर है। प्रभु के वचनों को सुनकर जो आज्ञा कह करके वैष्णव गण श्रीधर के घर को भागे। अरे भगवान बुला रहे हैं, भागे। धायल वैष्णव गण प्रभु रे वचने, आज्ञा लय गेला तारा श्रीधर भवने। अब श्रीधर का चरित्र सुनिए। केला की दुकान करके अपने प्राणों की रक्षा करता है, केला की दुकान है। एक बार जो केले का वृक्ष खरीद करके ले आता है, केले का पेड़ खरीद के लाता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचता है, उससे दिन भर में जो कमाई होती है उसके आधे से गंगा जी को भोग लगाता है। कितनी कमाई? 4 पैसे की कमाई हुई तो 2 पैसा गंगा जी की पूजा में लगाता है और आधे से अपने प्राणों की रक्षा करता है। विष्णु भक्ति की परीक्षा इसी प्रकार हुआ करती है। वो महासत्यवादी है, जो मूल्य एक बार कह देता उससे फिर दूसरा मूल्य नहीं कहता। जो लोग उसकी इस आदत को जानते थे वे जो मूल्य एक बार कह देता तुरंत वही मूल्य देकर के ले जाते थे, समय खराब नहीं करते थे। फिर भाव ना कहते, मोल भाव नहीं करते हैं, क्यों टाइम खराब किया जाए, जो कह दिया तो पैसा देकर के ले जाते थे। इस प्रकार नवदीप में ये रहता था। खोला बेचा इसका नाम था, खोला बेचा श्रीधर। श्री कृष्ण का नाम लेते हुए इन्हें 4 प्रहर नींद नहीं आती है, पूरी रात हरी हरी की ऊंची टेर लगाते हैं। पाखंडी निंदक लोग कहते श्रीधर की चिल्लाहट के मारे हम रात भर सो नहीं पाते हैं, हमारे दोनों कान फटे जाते हैं, भात से पेट भरता नहीं, इसी से भूख से व्याकुल होकर रात भर जग जग करके मरता है। इस प्रकार पाखंडी लोग गाली देते हैं, परंतु श्रीधर मस्त होकर अपने काम में लगा रहता। रात्रि का समय था, श्रीधर अपने घर में ऊंचे स्वर में बड़े प्रेम के साथ हरी हरी बोल रहा था। इधर से भक्तजन आधा ही रास्ता जा पाए वहीं उनको श्रीधर की आवाज सुनाई पड़ी, इतना जोर से कीर्तन करता था। उस टेर का अनुसरण करते हुए भक्तजन चले, तुरंत श्रीधर को मिले। बोले महाशय चलिए चलिए प्रभु के दर्शन कीजिए, हम तो आज तुम्हारा स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गए हैं। प्रभु का नाम सुनकर श्रीधर तो मूर्छित हो गया, अब कैसे जाए, प्रेम में मूर्छित हो गया कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, मैं कहाँ इतना योग्य हूँ, तो मूर्छित हो गया। आनंद में बेहबल होकर भूमि पर गिर पड़ा। भक्तों ने जैसे तैसे उसको उठाया और कंधों पर उठाकर विश्वंभर के आगे ले आए, अब मूर्छित अवस्था में ले गया है। आधे बैठे भक्त गण लैला तो लिया विश्वंभर अग्रने ले अलग करिया। श्रीधर को देखकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और आओ आओ कहते हुए बोले श्रीधर तुमने मेरी अमित आराधना की है और मेरे प्रेम में बहुत जन्म बिताए हैं। भगवान जानते हैं सबके जन्म को, मेरे प्रेम में तुमने बहुत जन्म बिताए हैं, इस जन्म में भी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हारे केला पत्ता पर मैंने सदा अन्न प्रसाद पाया। तो भगवान आते थे उसकी दुकान से और खरीदते थे, केला का पत्ता खरीदते थे और उसमें अपने घर में जाकर के भोजन करते थे। भगवान कहते तुम्हारे केला पत्र पर मैंने सदा अन्न प्रसाद पाया है, तुम्हारे हाथ के बहुत से पदार्थ मैंने खाए, तुम मेरे साथ जो सवाल जवाब किया करते थे उन्हें भूल गए क्या? तो भगवान बहुत लीला करते थे श्रीधर के साथ, मतलब भगवान ही थे एकमात्र जो उसके साथ बहस करते थे कि क्यों इतना तेज, इतना ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हो, बाकी कोई उससे बहस नहीं करता था, भगवान करते थे उसके साथ बहस। जिस समय प्रभु विद्या विलास में रत थे, उस समय आप अपने को परम उद्दंड जैसा दिखाते थे, उस समय अपने रूप को छिपाकर प्रभु ने श्रीधर के साथ केला के पत्ते फल फूल लेने के छल से बहुत कुछ कौतुक विनोद किया था। आप रोज श्रीधर की दुकान पर जाकर केला के फूल गूदा फल मूल छाल मोल ले आते, परंतु प्रतिदिन चार घड़ी उससे लड़ झगड़ लेते थे। चार घड़ी पता कितना होता है, एक घड़ी 24 मिनट की है तो चार घड़ी कितना हुआ 96 मिनट, यानी डेढ़ घंटा, डेढ़ घंटा उसके साथ नोक झोंक करते थे और तब आधा पैसा दे करके सामान लेते थे। सत्यवादी श्रीधर ने जो दाम लेने होते थे वही बदला था, वो नहीं सोचता था कि आधे करेगा तो मैं पहले से दोने बता दूं, तो वो सत्यवादी था। हाँ, और भगवान जो है जो भी बताए वो बताए उसका आधा करा के लेते थे और डेढ़ घंटा लड़ाई झगड़ा करके आधा पैसा देते थे उसको। और वो जो है कभी नहीं सोचता था कि इतनी लड़ाई झगड़ा होगी तो मैं पहले से दोना बता दूं, और जब ये आधा बताएगा तो मैं दे दूंगा आधे में, तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, तो वो उसका नियम था सत्यवादी। और प्रभु क्या करते थे, उसका आधा दाम दे करके वस्तु अपने हाथ से उठा लेते, तो वो भी उठ कर खड़ा हो जाता और वस्तु छीनने लगता। इस प्रकार सेवक और प्रभु में खूब छीना छपटी और जिद्दम जिद्दा चलती थी, वो भी जिद्दी और भगवान भी जिद्दी, नहीं आधे पैसे देंगे, पूरे पैसे देंगे नहीं तुमको। प्रभु कहते क्यों भाई श्रीधर, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम मेरे हाथ से चीज छीन लेते हो। अरे तुम इतने दिनों में ना जान पाए कि मैं कौन हूँ, अभी ये तो मतलब ब्राह्मण था, प्रभु पर क्रोध नहीं करता था, बस उनके मुख की ओर देखता रहता, अपनी चीजें छीन लेता था और देखता रहता है, उसको गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अपना नियम है, अपने नियम के अनुसार जो है सामान देता था नहीं था। परम ब्रह्मण श्रीधर क्रुद्ध नहीं आए वदन देखी सब द्रव्य काढ़ी लय। श्री गौरांग का मदन मोहन रूप मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक शोभा देता था, त्रिकच्छ वस्त्र धारण किए और कुटिल कुंतल शोभा देते हैं, यानी भगवान के जो केश हैं वो कुटिल हैं टेढ़े हैं, नयन नेत्र स्वभाव से परम चंचल हैं, शुभ यज्ञोपवीत धारण किए हैं। इस प्रकार से श्रीधर की ओर देख करके भगवान हंस देते हैं। अब श्रीधर छीन लेता है तो भगवान क्या करते हैं, हंसने लगते हैं, हंसने लगते हैं और फिर दोबारा उठा लेते हैं। दोबारा उठा लेते हैं, भगवान बुरा नहीं मानते कि कितना अपमान करता है। छीन लिया उसके भगवान के हाथ से छीन लिया तो भगवान हंसे, फिर से उठा लिया, फिर से उठा लिया। श्रीधर कहता है सुनो ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा करो, मैं तो तुम्हारा कुत्ता हूँ, तुम्हारे अधीन हूँ। प्रभु कहते मैं जानता हूँ तुम बड़े चतुर हो, खोला बेच बेच कर तुम्हारे पास काफी धन हो गया है। श्रीधर रोज के श्रीधर कहता क्या और दुकानें नहीं हैं, कम दाम देकर वहीं से केला पत्ता खरीद लो। तो प्रभु कहते मैं अपने रोज के सौदागर को नहीं छोड़ सकता हूँ, लड़ाई झगड़ा जो भी है लूंगा तो तुम्ही से लूंगा और किसी से नहीं लूंगा मैं। अरे दाम लो मुझसे और दो केला, क्यों नहीं दे रहे हो, दाम लो, अब दे रहे आधे था, अरे दाम लो और दो केला। श्रीधर तो प्रभु का रूप देख करके मुग्ध हो जाता और हंसने लगता। तब प्रभु विश्वंभर मन में परम संतोष होते हुए भी खरी खोटी सुनाते हैं। प्रभु कहते तुम नित्य प्रति वस्तु खरीद कर गंगा को तो चढ़ाते हो, फिर मेरे लिए दाम को छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, आधी आमदनी तो गंगा जी को देता है, मेरे लिए कुछ छोड़ देगा तो क्या होगा। अरे जिस गंगा की तुम पूजा करते हो मैं तो उसका पति हूँ, ये मैंने तुमसे सत्य सत्य बात कही है। तब तो सीधा झट से अपने कानों को पकड़ कर हरी हरी बोलने लगता है, ओहो हो बड़ा अपराध हो गया, सुन लिया। हरी हरी बोलता और बहुत ढीठ देख करके खोला पत्थर लेता है, जाओ जाओ हो गया हो गया हो गया, अब चले आओ जाओ हो गया, क्योंकि सुनना नहीं चाहता ना गंगा जी के बारे में ऐसे बोल रहा है, है? तो इस प्रकार प्रभु नित्य प्रति श्रीधर से तकरार करते थे, और श्रीधर इतना जानता था कि ये ब्राह्मण बहुत चंचल है, है? श्रीधर कहता मैं हार गया, अब मैं तुम्हें बिना पैसे के दे देता हूँ, इतना ज्यादा बोल दिया है मैं सुन नहीं सकता हूँ, तो ले जाओ बिना पैसे के, क्षमा करो मुझे, एक टुकड़ा खोला और एक टुकड़ा थोड़ और एक टुकड़ा केला फल दूंगा, फिर तो मेरा कोई दोष नहीं रहेगा, इतना दे दूंगा रोज, है ना, लेकिन गंगा जी के बारे में मत बोलना इतना फ्री में दे दूंगा, लेकिन और कुछ बात नहीं बोलना। प्रभु कहते अच्छा अब और तुम्हारा कुछ देना नहीं है, ठीक है। श्रीधर के खोला पर प्रभु प्रतिदिन अन्न भात खाते थे, उसके घर उसके दुकान से लेकर के छीना छपटी करके उसी पर अपना भोजन करते थे। भक्तों की वस्तु प्रभु इस प्रकार खाते हैं, और करोड़पति भक्तों की वस्तु यत्न करने पर भी प्रभु देखते नहीं, करोड़पति की चीज जो है यत्न करने पर भी नहीं देखते हैं, और भक्तों की चीज छीन छीन के खाते हैं। श्री चैतन्य श्रीधर के साथ इस प्रकार की लीला करेंगे, ये लीला शक्ति का विधान था, इसलिए श्रीधर खोला बेचते थे, इस लीला के लिए ही श्रीधर खोला बेचते थे। विष्णु और वैष्णवों की लीला कौन समझ सकता है, बिना प्रभु के जनाए वो श्रीधर भी नहीं जान पाया, श्रीधर को भी भगवान नहीं जनाना चाहते, है ना, और उससे करते हैं ऐसे ही झगड़ा करते हैं ना। बिनि प्रभु जानाइले से नाए जाने, से कथा प्रभु कराइले निस्मरणे। प्रभु बोले श्रीधर देख मेरे रूप को, अब भगवान इस समय बता रहे हैं अपने ईश्वर भाव में, भगवान कह रहे हैं श्रीधर देख मेरे रूप को, यदि तू चाहे तो अष्ट सिद्धियां दे दूं तुझको, आठ प्रकार की सिद्धियां, अणिमा लघिमा गरिमा ये सब दे दूं। महापुरुष श्रीधर ने सिर उठाकर देखा तो विश्वम्भर के श्याम रूप में दर्शन किए, उनके साथ मोहिनी बंसी और दाहिनी और बलराम हैं, महाज्योतिर्मय स्वरूप हैं, लक्ष्मी जी उनके हाथ में तांबूल दे रही हैं, सामने चार मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, पांच मुख वाले शिव जी हैं, स्तुति कर रहे हैं, और सिर के ऊपर महाफणों का छत्र दिखाई देता है, हरिवो हरिवो, और हाथ जोड़े सनक आदि चार कुमार हैं, नानक जी हैं, सुखदेव हैं, ये सब खड़े हैं, परम सुंदरी स्त्रियां हाथ जोड़े चारों ओर खड़ी स्तुति कर रही हैं, ये सब देखते ही श्रीधर तो मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर गया। तब प्रभु की आज्ञा हुई उठ उठ श्रीधर, प्रभु के वचन से श्रीधर सचेत हो उठा, प्रभु बोले श्रीधर मेरी स्तुति कर, अब भगवान क्या बोले मेरी स्तुति कर, श्रीधर बोला नाथ मैं तो मूढ़ हूं, भला आपकी स्तुति क्या जानूं, इस तुच्छ की शक्ति क्या है कि आपकी स्तुति करूं, श्रीधर बोला अशिक्षित है। प्रभु बोले तेरे मुख के वचन ही मेरी स्तुति है, तुम बोल कुछ, भगवान बोले जो कुछ भी तुम बोलेगा वही मेरी स्तुति बन जाएगी, तुम मुंह खोल अपना तुम बोल कुछ, भगवान बोले कौन स्तुति जानो मुए छारे रसा काते, प्रभु बोले तोरे वाक्य से ही मोरे स्तुति, और प्रभु की आज्ञा से सरस्वती श्रीधर की जीवा पर आ गई और श्रीधर स्तुति करने लगा। आप सुनिए स्तुति, कभी स्तुति नहीं की थी भगवान की, हैं वैसे पूजा करता था, लेकिन अभी स्तुति उसके मुंह से निकल रही, कैसे, महाप्रभु विश्वम्भर की जय हो जय हो, नवदीप के इंद्र की जय हो जय हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ आपकी जय हो जय हो, पुण्यवती सची के पुत्र आपकी जय हो जय हो, हे वेद के गुप्त तत्व आपकी जय हो, हे विप्रराज आपकी जय हो, आप युग युग में नाना कार्य द्वारा धर्म का पालन करते हैं, आप इस नदिया नगर में गुप्त रूप से विचरते रहे, आपको कोई पहचान ना सका, आपके जनाए बिना कौन आपको जान सकता है, आप धर्म स्वरूप हैं, आप कर्म स्वरूप हैं, आप ही भक्ति और ज्ञान स्वरूप हैं, आप शास्त्र हैं, आप वेद हैं, आप ही सर्व ध्यान स्वरूप हैं, आप वृद्धि हैं सिद्धि हैं, योग और भोग स्वरूप भी आप ही हैं, आप श्रद्धा हैं दया हैं, और आप ही मोह और लोभ स्वरूप हैं, आप इंद्र हैं चंद्र हैं अग्नि और जल स्वरूप हैं, आप सूर्य हैं वायु हैं, आप ही धन बल स्वरूप हैं, आप भक्ति हैं मुक्ति हैं, और ब्रह्मा और शंकर भी आप हैं। नहीं नहीं, आप ये सब क्यों हैं? यही सब आपके अधीन है। आपने ही मुझसे पहले कहा था कि देख ये तेरी गंगा तो मेरे चरणों का जल है। तब मैं पापी नहीं समझ पाया आपकी बात को और मैं आपके इन चरणों को नहीं पहचान पाया। आपने गोकुल नगर को धन्य किया, वही आप अब नवदीप के स्वामी हैं। आप जिस भक्ति को अपने भीतर धारण करके विचरते हैं वो भक्ति वहाँ यहाँ नवदीप में आकर प्रकट हो गई है, बाहर प्रकट हो। भक्ति को आप अंदर छिपा करके विचरते हैं सुखपूर्वक, वो भक्ति है अब नवदीप में क्या हो गई, बाहर प्रकट हो गई है। भक्ति के प्रभाव से ही भीष्म पितामह ने आपको जीत लिया। भक्ति के प्रभाव से भीष्म ने आपको जीत लिया, यानी उन्होंने आपने प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा और शस्त्र उठवा लिया, तो भीष्म ने आपको जीत लिया। तो भक्ति के बल से आपको भीष्म ने जीत लिया, भक्ति के बल से यशोदा जी ने आपको बांध लिया, भक्ति के भाव में सत्य भामा ने आपको बेच दिया और भक्ति के वशीभूत होकर ही आप श्री राधा को, आपने राधा को कंधे पर चढ़ाया। आपको तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्राणी अपने हृदय में धारण करते हैं और आप श्री रामा गोप को अपने कंधे पर धारण करते हैं। जिसके द्वारा अपनी पराजय हो उसे लोग किसी को नहीं बतलाते हैं, उसे तो बड़े यत्न से छिपा कर रखते हैं, अपनी कमजोरी कोई नहीं बताता है ना। आप भी भक्ति महारानी के द्वारा सब जगह पछाड़ खा करके भक्ति को छिपा करके विजयी बने फिरते हो, क्या समझे कैसी अद्भुत स्थिति है, भक्ति महारानी को जो है आप छिपा करके विजयी बने फिरते हो क्योंकि भक्ति के द्वारा पछाड़ खाते हो आप, तो भक्ति के द्वारा पछाड़ खा जाते हो तो भक्ति को छिपा करके विजयी बने फिरते हो। वो अब आपकी माया छल कपट चूर चूर हो गया है, अब और नहीं चलेगा। कारण कि देखो सब लोग आपसे भक्ति मांग रहे हैं, उस समय तो आप दो चार जनों के से ही हारे थे, ज्यादा लोगों को भक्ति नहीं दी थी आपने, किस समय कृष्ण के अवतार में, परंतु इस समय तो आपको एक एक भक्त अपने प्रेम से बांध लेंगे। आज आप जो है मतलब बिल्कुल कमजोर हैं, भक्ति प्रकट हो गई है और सब आपकी भक्ति मांग रहे हैं। से काले हारी लाजन दुई चार स्थाने एकाले बांधी वा तुम सर्व, एकाले बांधी वा तुम सर्व जने जने। श्रीधर की ऐसी वाणी को सुनकर सब वैष्णव विस्मित हो गए। अरे ऐसी ऐसी भी स्तुति हो सकती है क्या? निंदा के छल से स्तुति देखने में निंदा लग रही है कि आप अपनी कमजोरी को छिपाते फिरते, यानी भक्ति को छिपाते फिरते हो और भक्ति के द्वारा ही हारते हो तो उसको आप किसी को देते नहीं हो, यानी हार तो सब लोग मांग रहे हैं, अब तो सबसे हारोगे, अब तो सब आपको पछाड़ेंगे। तो इस तरह से कभी नहीं, कभी किसी ने स्तुति नहीं की थी आज तक, है ना। तो सरस्वती ऐसी उसकी जेहवा में आई कि ऐसी बात वो बोल रहा है। श्रीधर की ऐसी वाणी को सुनकर सब वैष्णव विस्मित हो गए। तब प्रभु बोले, श्रीधर चुन करके वर मांग लो। अब भगवान क्या बोले, श्रीधर चुन करके वर मांग लो, मैं आज 8 सिद्धियां तुमको दे देता हूं। श्रीधर बोला, प्रभु और भी बहकाना चाहते हो क्या? पर निश्चय जानो अब आपकी चाल नहीं चलेगी, अब आपकी चाल नहीं चलेगी। प्रभु बोले, परंतु मेरा दर्शन तो व्यर्थ नहीं जाता, मैं तो तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो तुम्हारा चित्त चाहे वही वरदान मिल जाएगा। इस प्रकार जब विश्वंभर प्रभु बार बार मांग मांग बोलते हैं तो श्रीधर बोला, प्रभु यही वरदान दो कि जिस ब्राह्मण ने मेरे खोला पत्ते छीने थे, जो ब्राह्मण मेरी दुकान में आके छीना छप्पी करता था, वही ब्राह्मण जन्म जन्म में मेरा स्वामी बने। जो ब्राह्मण मेरे साथ झगड़ा किया करता था उसके चरण, दोनों चरण मेरे प्रभु हों। कहते कहते श्रीधर का प्रेम भाव बढ़ा और दोनों हाथ उठा करके बड़े जोर से रोया, बड़े जोर से रोया। श्रीधर की ये भक्ति देखकर वैष्णव सब बेहवल हो गए और रोने लगे। तब विश्वंभर प्रभु हंसकर बोले, सुनो श्रीधर, मैं तुमको एक बड़े राज्य का स्वामी बना देता हूँ। अभी भी चाल चल रहे हैं, श्रीधर बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा कर दो प्रभु कि मैं आपका नाम गाया करूं। प्रभु बोले श्रीधर तुम मेरे दास हो, इसीलिए तुमने मेरा ये महाप्रकाश देखा है, इतने पर भी तुम्हारी मति नहीं टली, अतः मैंने तुम्हें वेदों में भी जो गुप्त प्रेम भक्ति योग दे दिया। वैष्णव में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी, श्रीधर को जो वरदान मिला उसे सबने सुना। श्री चैतन्य के सेवकों के पास न धन है, न जन है, न पंडिताई है, इनको कौन पहचान सकता है? विद्या, धन, रूप, कुल, वेशभूषा, इनसे क्या होगा? ये तो अहंकार बढ़ाकर जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं। विद्या है, कुल है, रूप है, अहंकार बढ़ा करके जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं और वो व्यक्ति भी खत्म हो जाता है। श्रीधर ने केला बेचकर जो भक्ति योग पाया उसके दर्शन भी करोड़पतियों को करोड़ों कल्पों में भी नहीं होंगे, करोड़पतियों को करोड़ों कल्पों में भी उसके दर्शन नहीं होंगे जो भक्ति योग पाया। पाने के बाद तो बहुत दूर, दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। कौन? करोड़पति। कितने समय तक? करोड़ कल्पों तक भी नहीं, देख भी नहीं पाएंगे। विषयों में केवल अहंकार है, उसका फल पतन है, परंतु परिणाम को लोग नहीं जानते। जो सज्जन को मूर्ख और दरिद्र को देखकर हंसता है वो अपने कर्म दोष से कुंभीपाक नरक में जाता है। किसकी सामर्थ है कि वैष्णवों को पहचान सके? देखने में तो उनकी दीन दशा दिखाई देती है किंतु सब सिद्धियां उनमें रहती हैं। इसका साक्षी है खोला बेचा श्रीधर, जिनसे अष्ट सिद्धियों की, जिसने अष्ट सिद्धियों की उपेक्षा करके केवल भक्ति ली। आठ सिद्धियां, बाप रे, ऐसी सिद्धियां कौन नहीं चाहेगा? अड़िमा, आप अणु से भी छोटे बन जाएं, इतनी ऐसी सिद्धि है, अणु से भी छोटे बन जाएं, आपको कोई संदूक में बंद कर दे, ताला लगा दे, आप बाहर निकल आएंगे अणिमा सिद्धि के द्वारा, है ना? कहीं भी जा सकते हैं अणिमा सिद्धि के द्वारा, कौन नहीं चाहेगा? लेकिन नहीं, भक्ति, भक्ति का वरदान मांगा, केवल भक्ति ली। वैष्णवों के व्यवहारिक जीवन में जितने दुख दिखाई देते हैं निश्चय ही वो सुख रूप जानना चाहिए। ऐसे दुख दिखाई देते हैं कि बहुत दरिद्र है, बहुत दुखी है, लेकिन वो सुख है। विषयी लोग इस मर्म को नहीं जानते हैं, वे विद्या और धन के मद में वैष्णव को नहीं पहचान पाते। किसी किसी की बुद्धि तो भागवत पढ़ करके भी नष्ट हो जाती है और वे नित्यानंद की निंदा करते हैं, उनका नाश हो जाएगा। श्रीधर ने प्रभु की स्तुति करके वरदान पाया, इस प्रसंग को जो सुनते हैं, क्या इस प्रसंग को जो सुनते हैं, सुन रहे आप लोग, इस प्रसंग को जो सुनते हैं वे प्रेम धन पाते हैं। उनकी श्री कृष्ण चरण कमल में प्रेम भक्ति होती है। वे ही श्री कृष्ण को पाते हैं जो वैष्णवों की निंदा नहीं करते, निंदा के द्वारा कुछ काम नहीं बनता, केवल पाप ही मिलता है। इसी कारण महापुरुष किसी की निंदा नहीं करते, अनिंदक बनकर जो एक बार भी श्री कृष्ण का नाम लेता है, श्री कृष्ण उसका सहज ही में उद्धार कर देंगे। ये सत्य है, सत्य है। श्री वैष्णवों के चरणों में मेरी यही मनोकामना है कि श्री चैतन्य और नित्यानंद मेरे प्राण हो। इस प्रकार से श्रीधर की कुछ घटना मैंने सुनाई। अब एक घटना और है, ठीक है, अब मिल नहीं रहा लेकिन मैं संक्षेप में बता देता हूँ। ये घटना उस समय की है जब श्री चैतन्य ने चांद काजी का उद्धार किया। तो चांद काजी के घर में श्री चैतन्य ने उसको अच्छी तरह से अपमानित किया और उससे वचन लिया कि वो अपने अपने वंश में भी, उसके वंश में भी कोई कीर्तन को बंद नहीं कराएगा। उसके बाद फिर उसके घर से भगवान जब कीर्तन करते हुए निकलते हैं तो श्रीधर के घर में आते हैं और श्रीधर के घर में एक लोटा है, वो भी जो है लोहे का लोटा है और उसमें भी छेद है, उसको कोई चोर भी ना चुराए, वो उसकी संपत्ति उसके घर की है ना। तो भगवान जब आए श्रीधर के घर में तो उस लोटे से उन्होंने पानी पिया और श्रीधर ने अपना बड़ा वो माना कि मेरा तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है कि भगवान साक्षात भगवान ने मेरे लोटे का पानी पिया। और भगवान के इस प्रेम को देख करके कि भक्त का जो है भगवान छीन छीन करके भी ऐसी चीज़ें खाते पीते हैं, तो भक्त लोग जो है रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं भगवान के ऐसे प्रेम को देख करके। तो श्रीधर के विषय में हमने कुछ इस तरह की चर्चा की है। तो आज श्रीधर का पंडित का तिरुभाव दिवस है और मुकुंद दत्त का तिरुभाव दिवस है, तो हम जो है प्रार्थना करते हैं कि उनके चरणों की कुछ कृपा अगर हमें मिले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हरिओम। आपको सूचना है वो आप लोगों को जो है देंगे भक्त लोग।
गुरु जी ने बड़ा सुंदर कथा हमको सुनाया। तो गुरु जी के गुण के बारे में तो गुरु जी बता रहे थे सर मंगल गौर गुरु जी कि मंगल आरती जो है ना प्रभु जी जब से जो है कि मंगल आरती बीच की किए हैं और पहले गुरु जी इस चीज़ को बताना नहीं चाहते थे लोगों को, लेकिन जो भक्तों में जो गुण है वो प्रकट हो ही आता है। कि सूर्य को कोई ढकना चाहे तो ढक सकता है, नहीं ढक सकता, कभी कभी प्रकट हो ही जाता है। इन प्रभु जी की जो गुण है श्री भगवान ने कहा पुस्तक तो आप लोग कभी